एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है, सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत।
नमस्कार, आज हम बात करने वाले एक बहुत ही प्रभावशाली दार्शनिक और उनकी एक बेहद अहम किताब पर।
बिल्कुल, मैं हूँ मेजबान एक का नाम
और मैं हूँ मेजबान दो का नाम, और आज हम गोता लगा रहे हैं सिमोन द बुवार की 1947 में आई किताब द एथिक्स ऑफ एम्बिग्युइटी।
हाँ, जिसे हम कह सकते हैं अस्पष्टता का नीति शास्त्र या शायद कश्मकश का दर्शन,
कह सकते हैं। और देखिए, ये किताब आज भी, मतलब 1947 में लिखी गई थी, पर आज भी उतनी ही जरूरी है, शायद पहले से भी ज्यादा।
क्यों ऐसा?
क्योंकि ये उन बुनियादी सवालों से जूझती है जो हम सब कभी ना कभी सोचते हैं, जैसे भाई ये जो आज़ादी मिली है इसका मतलब क्या है।
हाँ,
और अगर कोई ऊपर वाला नहीं है या कोई तयशुदा नैतिक नियम नहीं है तो फिर सही गलत का फैसला कैसे हो।
ये तो बड़ा सवाल है।
बिल्कुल। और ये जो अनिश्चितता है जिंदगी में, ये कश्मकश, इसमें एक मीनिंगफुल, एक सार्थक जिंदगी कैसे जिए, ये किताब इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द घूमती है।
तो चलिए पहले सिमोन द बुवार को थोड़ा जान लेते हैं। सिर्फ एक राइटर तो वो थी नहीं।
बिल्कुल नहीं, वो 20वीं सदी की एक बहुत बड़ी फ्रेंच फिलोसोफर थी, सोशल थिंकर और फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट भी। 1908 में पैदा हुई, 1986 में गुजरी।
और उनकी सबसे फेमस किताब तो शायद द सेकंड सेक्स है, 1949 वाली।
हाँ बिल्कुल, उसने फेमिनिज्म की दूसरी लहर की नींव रखी थी, ऐसा माना जाता है। पेरिस के मशहूर सोरबोन यूनिवर्सिटी से उन्होंने फिलॉसफी पढ़ी और उनकी जॉन पॉल सात्र के साथ, जो खुद एक बड़े अस्तित्ववादी दार्शनिक थे, एक लाइफ लॉन्ग इंटेलेक्चुअल पार्टनरशिप रही।
लेकिन ये किताब द एथिक्स ऑफ एम्बिग्युइटी लिखने के लिए उनकी क्या खास बात थी, मतलब वो क्यों इसके लिए सही इंसान थी?
देखिए, दो बड़ी वजह हैं। पहली तो, जैसा आपने कहा, वो सार्त्र के साथ अस्तित्ववाद यानी एग्जिस्टेंशियलिज्म को डेवलप करने में शामिल थी, तो उन्हें इसकी गहरी समझ थी।
हाँ,
और कई लोग सार्त्र के काम में एक क्लियर मॉरल फ्रेमवर्क, एक नैतिक दिशा की कमी महसूस करते थे। बोवार ने सीधे इसी चैलेंज को उठाया। उन्होंने कहा कि नहीं, अस्तित्ववाद से भी नैतिकता निकल सकती है।
अच्छा, और दूसरी वजह?
दूसरी और शायद ज्यादा जरूरी, उनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। उन्होंने वर्ल्ड वॉर टू देखा, फ्रांस पर नाजी कब्जा देखा, युद्ध के बाद की जो नैतिक दहसें थीं वो सब करीब से देखी। उन्होंने देखा कि कैसे फासिज्म या स्टालिनिज्म जैसी कट्टर विचारधाराएं, या फिर ये सोच कि कुछ भी सही गलत नहीं होता, जिसे नैतिक शून्यवाद कहते हैं, कितनी तबाही ला सकती है। तो ये किताब सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, ये दुनिया की असली मुश्किलों का, जुल्म का, मतलब की तलाश का एक बहुत जरूरी जवाब है।
समझ गया। तो अब आते हैं किताब पर। द एथिक्स ऑफ एम्बिग्विटी आखिर है किस बारे में, इसका मेन पॉइंट क्या है?
इसका निचोड़ अगर एक लाइन में कहें तो ये है कि नास्तिक अस्तित्ववाद, मतलब वो दर्शन जो ईश्वर को नहीं मानता, कोई निराशा या खुदगर्जी का दर्शन नहीं है, जैसा कई लोग उस वक्त सोचते थे।
हाँ, ये इल्ज़ाम तो लगता था अस्तित्ववाद पर।
बिल्कुल, बुवार कहती हैं कि नहीं, बल्कि यही वो नज़रिया है जो हमें इंसानी आज़ादी और सबकी जिम्मेदारी पर टिकी एक सच्ची, एक ऑथेंटिक नैतिकता दे सकता है। वो इस सोच को गलत साबित करना चाहती हैं कि अगर भगवान नहीं, जिंदगी का कोई पहले से तय मतलब नहीं, तो फिर नैतिकता मुमकिन ही नहीं।
तो ये किताब है किसके लिए? क्या सिर्फ फिलॉसफी के स्टूडेंट्स के लिए?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये हर उस इंसान के लिए है जो आज की दुनिया में, मतलब वैल्यूज, सही रास्ता, जिंदगी का मकसद, इन चीजों को लेकर उलझन में है। खासकर तब जब धर्म या किसी एक यूनिवर्सल तर्क पर टिके पुराने जवाब थोड़े कमजोर लगने लगते हैं। ये हर उस व्यक्ति से बात करती है जिसने कभी अपनी फ्रीडम का, अपनी आज़ादी का बोझ महसूस किया हो और सोचा हो कि यार इसका सही इस्तेमाल कैसे करें, इसे अच्छे के लिए कैसे इस्तेमाल करें।
और आपने शुरू में कहा था कि किताब का सेंट्रल आइडिया अस्पष्टता यानी एम्बिग्विटी है, ये क्या है? सुनने में तो थोड़ा नेगेटिव सा लगता है।
हाँ, शब्द शायद थोड़ा भारी लगे, पर आइडिया बहुत दिलचस्प है। बुवार कहती हैं कि इंसान का होना ही, हमारा अस्तित्व ही, विरोधाभासों से, कॉन्ट्रडिक्शन से भरा है, यही अस्पष्टता है।
कैसे विरोधाभास?
देखिए, एक तरफ हम आज़ाद चेतना हैं, बोआर इसके लिए शब्द इस्तेमाल करती हैं पराभौतिकता या ट्रांसेंडेंस, मतलब हम सोच सकते हैं, सपने देख सकते हैं, प्लान बना सकते हैं, अपने मौजूदा हालत से आगे जा सकते हैं।
जैसे पिंजरे में बंद पंछी का उड़ने का सोचना?
हाँ, कुछ वैसा ही, लेकिन दूसरी तरफ हम एक सीमित फिजिकल बॉडी भी है, हार्ड मास के बने। इसे वो कहती हैं जड़ता या इमिनेंस। हम इस दुनिया से बंधे हैं, अपनी ज़रूरतों से, भूख प्यास से और आखिर में मौत से। ये वो हकीकत है कि हम उस पिंजरे में बंद हैं।
तो आज़ाद भी और कैद भी।
एग्जैक्टली। और एक और विरोधाभास, हम इंडिविजुअल हैं, अकेले हैं, पर हमारा वजूद, हमारा होना सिर्फ दूसरों के साथ ही मुमकिन है। दूसरों के संबंध में ही हम कुछ हैं।
ये तो वाकई कश्मकश है, मतलब एक तनाव है हमेशा।
बिल्कुल, यही है वो अस्पष्टता। और बोआर का मेन पॉइंट ये है कि इस कश्मकश से भागो मत, इसे एक्सेप्ट करो, इसे स्वीकार करना ही नैतिक जीवन की पहली सीढ़ी है।
क्यों? स्वीकार करने से क्या होगा?
क्योंकि यूनिवर्स हमें कोई बनी बनाई मीनिंग या रूल्स नहीं देता, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मीनिंग बनाने की, नैतिक चुनाव करने की पूरी जिम्मेदारी हमारी अपनी है। और सच्ची नैतिकता क्या है? वो है अपनी इस फ्रीडम को, इस आज़ादी को कबूल करना, उसे चाहना और सबसे ज़रूरी, दूसरों की फ्रीडम को भी चाहना।
दूसरों की फ्रीडम को भी चाहना, ये क्यों ज़रूरी है?
क्योंकि बोवार कहती हैं हमारी फ्रीडम अकेली नहीं जी जा सकती, ये दूसरों से जुड़ी हुई है। हम अपनी आज़ादी का इस्तेमाल करके ही तो दुनिया में कुछ करते हैं, प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, रिश्ते बनाते हैं, और ये सब दूसरों के साथ ही होता है। तो मेरी आज़ादी दूसरों की आज़ादी पर निर्भर है और उनकी मुझ पर।
अच्छा, ये दिलचस्प है। तो किताब में इस आइडिया को आगे कैसे बढ़ाया गया है?
पहले हिस्से में तो वो इसी अस्पष्टता और स्वतंत्रता को और गहराई से समझाती हैं। फिर दूसरे हिस्से में वो उन तरीकों की आलोचना करती हैं जिनसे लोग अपनी इस आज़ादी की जिम्मेदारी से भागते हैं। इसे ही अस्तित्ववादी भाषा में बैड फेथ या बुरा विश्वास कहा गया है।
हाँ, आपने जिक्र किया था बैड फेथ का, ये कौन लोग हैं? कुछ उदाहरण हैं इसके?
हाँ, बोआर कई टाइप बताती हैं। एक है सब मैन, मतलब वो इंसान जो बिल्कुल उदासीन है, दुनिया से कटावा, जिसे किसी चीज से कोई लेना देना नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, बस हालात के साथ बहता जाता है, कोई चुनाव नहीं करता, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, जैसे कोई बेजान चीज।
और आपने एक सीरियस मैन का भी जिक्र किया था जिसे वो सबसे खतरनाक मानती हैं।
हाँ, सीरियस मैन, ये बहुत कॉमन है और खतरनाक भी। ये वो इंसान है जो अपनी सोचने समझने की आज़ादी, अपनी फ्रीडम किसी बाहरी चीज को सौंप देता है।
बाहरी चीज मतलब?
मतलब कोई धर्म, कोई विचारधारा, कोई राष्ट्र, कोई कॉज, या यहाँ तक कि अपना करियर या पैसा। वो मान लेता है कि ये बाहरी चीज ही परम सत्य है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, और ये उसकी अपनी चॉइस से ऊपर है। फिर वो खुद को उस चीज का बस एक साधन, एक टूल बना लेता है।
और ये खतरनाक क्यों है?
खतरनाक इसलिए क्योंकि ऐसा इंसान उस बड़े लक्ष्य के नाम पर इंसानों की खुद की और दूसरों की कुर्बानी देने को तैयार हो जाता है। वो उस बाहरी आइडिया को इंसानों से ज्यादा जरूरी मानने लगता है। कट्टरता, फैनेटिज्म, जुल्म, इनकी जड़ अक्सर इसी सीरियसनेस में होती है। सोचिए किसी तानाशाह के अंधभक्त या किसी कट्टर विचारधारा के फॉलोअर।
ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है, आजकल भी दिखता है काफी। और कौन से तरीके हैं आजादी से भागने का?
फिर आता है नाइलिस्ट यानी शून्यवादी। ये अक्सर वो सीरियस मैन होता है जिसका मोहभंग हो चुका है। उसे ये तो समझ आ गया कि जिन बाहरी चीजों को वो सच मानता था वो खोखली हैं, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया नेगेटिव होती है। वो सोचता है कि अगर कोई मूल्य एब्सोल्यूट नहीं है तो सारे ही मूल्य बेकार हैं। फिर उसका मन करता है सब कुछ नष्ट कर दे, दुनिया, खुद को, हर तरह के मतलब को।
एक तरह का डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन।
हाँ। फिर एक एडवेंचरर भी है, ये अपनी आज़ादी को एंजॉय करता है, एक्शन, जीत, पावर चाहता है, लेकिन ये नैतिक रूप से फेल है क्योंकि इसे परवाह नहीं कि इसके कामों का दूसरों पर क्या असर हो रहा है।
अच्छा।
वो दूसरों को या तो रुकावट समझता है या इस्तेमाल की चीज। अपनी फ्रीडम तो चाहता है पर दूसरों की कीमत पर। इसी तरह पैशनेट मैन है जो अपना सब कुछ किसी एक जुनून पर लगा देता है, कोई इंसान, कोई आर्ट, कोई ज्ञान, और उसे ही सब कुछ मान लेता है, बाकी दुनिया से कट जाता है। ये सब अलग अलग तरीकों से अपनी पूरी जिम्मेदारी कबूल करने से भागना है।
तो ये सब तो हो गए बैड फेथ के रूप, आजादी से भागने के तरीके। लेकिन फिर रास्ता क्या है? बुवार कोई पॉजिटिव रास्ता भी दिखाती हैं?
बिल्कुल, किताब का तीसरा और आखिरी हिस्सा इसी पर फोकस करता है कि इस अस्पष्टता को स्वीकार करके एक सच्ची, एक ऑथेंटिक, नैतिक जिंदगी कैसे जी जाए।
कैसे?
वो एक कलाकार का उदाहरण देती हैं, एक आर्टिस्ट का। कलाकार क्या करता है? वो कुछ नया बनाता है, कुछ ऐसा जो पहले मौजूद नहीं था। वो दुनिया को देखने का एक नया नजरिया पेश करता है। लेकिन एक सच्चा कलाकार अपनी क्रिएशन को, अपनी कला को एकमात्र सच बताकर दूसरों पर थोपता नहीं है। वो उसे दूसरों की आज़ादी के सामने पेश करता है कि वो उसे देखें, समझें, उससे जुड़े या ना जुड़े। ये जो दूसरों की फ्रीडम का सम्मान करते हुए कुछ नया रचने का काम है, ये नैतिक एक्शन का एक मॉडल बन जाता है।
अच्छा,
और यहीं पर वो सबसे जरूरी बात आती है जिसका आपने शुरू में जिक्र किया था,
फ्रीडम के बारे में।
हाँ, जो शायद इस किताब का सबसे कोर आइडिया है, उसका दिल है। खुद को आजाद चाहना ही दूसरों की आजादी चाहना है।
खुद को आजाद चाहना ही दूसरों की आजादी चाहना है।
हाँ, सुनने में शायद सिंपल लगे, पर यह बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि मेरी आजादी कोई आइसोलेटेड चीज नहीं है। मैं अपनी फ्रीडम को एक्सरसाइज कैसे करता हूँ? दुनिया में प्रोजेक्ट्स बनाकर, काम करके, रिश्ते बनाकर, और ये सब दूसरों के साथ ही होता है। एक ऐसी दुनिया में जहाँ दूसरे भी आजाद हों।
तो मतलब मैं तब तक पूरी तरह आजाद नहीं हो सकता जब तक दूसरे गुलाम हैं या जुल्म सह रहे हैं?
एग्जैक्टली। किसी और पर होता जुल्म, किसी और की आजादी का छिनना, वो सीधे तौर पर फ्रीडम पर ही हमला है। और क्योंकि फ्रीडम ही मेरे सारे मूल्यों का, मेरे अस्तित्व का आधार है, तो वो हमला मुझ पर भी है, मेरी नींव पर भी है।
तो इससे एक सीधी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, एक मॉरल ऑब्लिगेशन।
बिल्कुल, एक फर्ज बनता है कि हम हर तरह के जुल्म के खिलाफ लड़ें, चाहे वो गरीबी हो, नाइंसाफी हो, तानाशाही हो, या किसी भी तरह का भेदभाव हो। क्योंकि जब हम दूसरों की आजादी के लिए लड़ते हैं, तो हम अपनी आजादी को भी मजबूत कर रहे होते हैं। आजादी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं, ये एक कलेक्टिव प्रोजेक्ट है।
लेकिन असल जिंदगी में फैसले लेना इतना ब्लैक एंड व्हाइट तो होता नहीं, कई बार बड़ी मुश्किल सिचुएशंस आ जाती हैं। क्या बुवारिन इस कॉम्प्लेक्सिटी पर बात करती हैं?
हाँ, वो इसकी बात करती हैं। वो इसे कहती हैं एक्शन के विरोधाभास या एंटोनिमीज ऑफ एक्शन। वो मानती हैं कि दुनिया में नैतिक चुनाव अक्सर बहुत पेचीदा होते हैं, कोई सिंपल रूल बुक या कोड नहीं है जिसे फॉलो कर लिया जाए।
जैसे?
जैसे कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ज्यादा लोगों की आजादी हासिल करने के लिए किसी जालिम की आजादी को कम करना पड़े, उसे रोकना पड़े। वो हिंसा जैसे मुश्किल सवाल पर भी चर्चा करती हैं। वो कहती हैं कि हिंसा कभी अपने आप में अच्छी चीज नहीं हो सकती, लेकिन शायद कभी कभी जुल्म के खिलाफ संघर्ष में एक दुखद, एक ट्रेजिक जरूरत बन सकती है।
तो कोई रेडीमेड जवाब नहीं है?
नहीं, नैतिक इंसान वो नहीं जो आंख बंद करके नियमों पर चलता है। नैतिक इंसान वो है जो हर स्थिति को उसकी कॉम्प्लेक्सिटी में समझता है, हमेशा ये कोशिश करता है कि फ्रीडम को कैसे बढ़ाया जाए और जुल्म को कैसे कम किया जाए, और वो अपने फैसलों की अस्पष्टता और जिम्मेदारी को पूरी तरह स्वीकार करता है। उसे पता है कि शायद उसका फैसला परफेक्ट ना हो, पर उसे उस स्थिति में वो चुनना पड़ा।
तो कुल मिलाकर एक नैतिक जीवन जीना कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहां पहुंचकर आराम कर लिया।
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक लगातार चलने वाला सफर है, एक कांस्टेंट स्ट्रगल है। ये कोई हासिल की जाने वाली स्थिति नहीं, बल्कि एक बनने की प्रक्रिया है, अ प्रोसेस ऑफ बिकमिंग। इसके लिए हिम्मत चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, और इस आपात बेमतलब दुनिया में मतलब गढ़ने का एक गहरा कमिटमेंट चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के साथ जुड़कर।
चलिए, ये तो बहुत गहरी बातें होगी। अब अगर हम कुछ मुख्य विचारों को, की टेकअवेज को समेटें, तो क्या कहेंगे? पहला तो शायद यही कि अस्पष्टता, वो कश्मकश जिंदगी का हिस्सा है।
हाँ, बिल्कुल, कि लाइफ कॉन्ट्रडिक्शन से भरी है। फ्रीडम भी है, लिमिटेशंस भी हैं, हम अकेले भी हैं और दूसरों से जुड़े भी। इसे सुलझाने की कोशिश मत करो, इसे एक्सेप्ट करो। ये हमें सिखाता है कि अनिश्चितता से डरने की जरूरत नहीं, उसके साथ जीना सीखना है। रोजमर्रा की जिंदगी में भी तो यही होता है ना, हमेशा सब कुछ साफ नहीं होता।
सही बात है। दूसरा बड़ा आइडिया, फ्रीडम ही सारे मूल्यों का सोर्स है।
हाँ, कोई बाहरी ताकत, भगवान या प्रकृति हमें रेडीमेड वैल्यूज नहीं देती। हम अपनी चॉइस से, अपने एक्शन से दुनिया में वैल्यू क्रिएट करते हैं। तो हमारी पहली मॉरल ड्यूटी है अपनी फ्रीडम को पहचानना, उसे क्लेम करना, उसे वैल्यू देना। यह हमें याद दिलाता है कि जब हम करियर चुनते हैं या कोई लाइफस्टाइल चुनते हैं, तो बाहरी दबावों से ज्यादा जरूरी है कि हम खुद क्या चाहते हैं, क्या वैल्यू करते हैं।
तीसरा, और ये मुझे बहुत जरूरी लगा आज के संदर्भ में, वो बैड फेथ और खासकर सीरियस मैन का खतरा।
हाँ, ये तो बहुत ही रेलेवेंट है। कैसे लोग अपनी क्रिटिकल थिंकिंग, अपनी सोचने की आजादी किसी बाहरी चीज के हवाले कर देते हैं, कोई विचारधारा, कोई नेता, कोई संस्था, यहाँ तक कि आजकल सोशल मीडिया पर चलने वाले नैरेटिव बुआर दिखाती हैं कि यही कट्टरता कि दूसरों को दबाने की जड़ है। हम अपने आसपास देखते हैं ना, कैसे लोग बहस में दूसरी तरफ सुनने को तैयार नहीं होते, या कैसे ऑफिस में सिर्फ टारगेट पूरा करना ही इंसानियत से बड़ा हो जाता है। ये हमें खुद को लगातार चेक करने को कहता है कि कहीं हम भी तो किसी चीज के सीरियस मैन या सीरियस वुमन तो नहीं बन गए हैं।
सही का। चौथा अहम संदेश, नैतिकता अकेले की चीज नहीं, ये इंटरपर्सनल है। मतलब मेरी फ्रीडम तुम्हारी फ्रीडम पर डिपेंड करती है।
बिल्कुल, फ्रीडम वैक्यूम में नहीं होती। ये तभी पनपती है जब हम दूसरों के साथ एक साझा दुनिया में रहते हैं जहां वो भी आजाद हों। इसलिए अगर हम दूसरों पर हो रहे अन्याय, जुल्म पर चुप रहते हैं, उदासीन रहते हैं, तो हम अनजाने में अपनी ही फ्रीडम की जमीन को कमजोर कर रहे होते हैं। ये समाज में आपसी सम्मान, एकजुटता, सॉलिडैरिटी की अहमियत बताता है।
और आखिरी पांचवा संदेश, मुक्ति का नैतिक दायित्व, यानी जुल्म के खिलाफ खड़ा होना।
हाँ, अगर फ्रीडम ही सबसे बड़ी मानवीय वैल्यू है, तो जुल्म, उत्पीड़न, ओप्रेशन, चाहे वो गरीबी के रूप में हो, नाइंसाफी के रूप में, तानाशाही के रूप में, वो सबसे बड़ी नैतिक बुराई है। इसलिए उसके खिलाफ लड़ना, आवाज उठाना सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक मॉरल ड्यूटी बन जाता है। ये दुनिया भर में जो सोशल जस्टिस मूवमेंट्स चल रहे हैं उन्हें एक फिलोसॉफिकल बेसिस देता है।
भंवार की लिखाई में कई ऐसी बातें हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं। कुछ खास विचारों पर बात करते हैं, जैसे ये, खुद को नैतिक चाहना और खुद को स्वतंत्र चाहना एक ही निर्णय है।
हाँ, इसका मतलब है कि मॉरल होना कोई बाहरी रूल्स फॉलो करना नहीं है, ये अंदर से आता है। ये अपनी फ्रीडम और उसकी जिम्मेदारी को होशपूर्वक, कॉन्शियसली चुनना है। जब आप नैतिक होने का फैसला करते हैं, आप असल में अपनी पूरी इंसानियत के साथ आजाद होने का फैसला कर रहे होते हैं। ये दोनों अलग नहीं है।
एक और विचार है, अस्पष्टता का मतलब ये नहीं कि जिंदगी बेतुकी है। ये कहना कि अस्तित्व अस्पष्ट है, इसका मतलब है कि इसका अर्थ कभी तय नहीं होता, इसे लगातार जीतना पड़ता है।
ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। कई बार लोग अस्तित्ववाद को बेतुकेपन से जोड़ देते हैं कि सब कुछ मीनिंगलेस है। बुआ कहती है, नहीं, बेतुकापन निराशा की तरफ ले जा सकता है, लेकिन अस्पष्टता एक चैलेंज है, एक ओपनिंग है। मतलब दिया हुआ नहीं है, फिक्स नहीं है, पर इसे बनाना नामुमकिन भी नहीं। हमें इसे लगातार अपने कामों से, अपनी चॉइस से जीतना पड़ता है, गढ़ना पड़ता है। इट हैज टू बी कॉन्स्टेंटली वन।
ये एक्टिव रोल पर जोर है।
बिल्कुल। और एक और कोट जो मुझे बहुत पसंद है, किसी का जीवन तब तक मूल्यवान है जब तक वह दूसरों के जीवन को प्यार, दोस्ती, गुस्से, करुणा के माध्यम से महत्व देता है।
गुस्से को भी शामिल किया है।
हाँ, ये फिर से दिखाता है कि अस्तित्ववाद कोई सेल्फिश फिलॉसफी नहीं है। हमारी लाइफ की वैल्यू, उसका मतलब दूसरों के साथ हमारे कनेक्शन में है। और ये कनेक्शन सिर्फ पॉजिटिव इमोशंस, प्यार, दोस्ती, करुणा ही नहीं, बल्कि अन्याय देखकर उठने वाले सही गुस्से, राइचियस एंगर से भी बनता है। दूसरों की तकलीफ पर महसूस होने वाला गुस्सा भी हमें उनसे जोड़ता है।
ये सब बातें तो बहुत गहरी हैं, सोचने वाली हैं, लेकिन सवाल वही आता है, रोजमर्रा की जिंदगी में प्रैक्टिकली इन विचारों का क्या करें?
देखिए, ये कोई सेल्फ हेल्प गाइड बुक तो नहीं है, पर ये हमारी सोच का नजरिया बदल सकती है। जैसे अपनी पर्सनल लाइफ में ये पूछने के बजाय कि मुझे क्या करना चाहिए, मतलब समाज या परंपरा क्या कहती है, हम ये पूछना शुरू कर सकते हैं, मैं क्या महत्व देना चुनती हूँ, मैं अपने कामों से कैसा इंसान बनना चुनती हूँ।
तो फोकस चाहिए से हटकर चुनती हूँ पर आ जाता है।
एग्जैक्टली। ये हमें अपने बड़े फैसलों, करियर, रिश्ते, लाइफस्टाइल में ज्यादा एजेंसी देता है, ज्यादा पावर देता है। ये हमें उस उदासीन सबमैन बनने से रोकता है और आंख बंद करके किसी परंपरा या दूसरों की उम्मीदों पर चलने वाले सीरियस मैन वुमन बनने से भी बचाता है।
और काम की जगह पर प्रोफेशनल लाइफ में,
ऑफिस में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, ये हमें उस सीरियसनेस से सावधान करता है जहां सिर्फ प्रॉफिट, केपीआईज या प्रमोशन ही अंतिम सत्य मान लिए जाते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या मेरा काम इंसानी गरिमा और आज़ादी को बढ़ावा दे रहा है या उसे कम कर रहा है? क्या हम अपने सहकर्मियों को इंसान समझ रहे हैं या सिर्फ रिसोर्स या मशीन का पुर्जा?
ये टीम लीडर्स के लिए भी सोचने वाली बात है।
बिल्कुल, ऐसा माहौल बनाने की जिम्मेदारी जहां लोगों की ऑटोनॉमी, उनकी अपनी सोच का सम्मान हो,
और समाज या राजनीति में हमारी भूमिका के बारे में,
जैसा हमने पहले कहा, ये सामाजिक न्याय के कामों के लिए बहुत मजबूत नैतिक आधार देता है। जुल्म के खिलाफ लड़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारी अपनी आज़ादी दूसरों से जुड़ी है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है, बुआर हमें आंदोलनों के अंदर भी सीरियसनेस या कट्टरता से सावधान करती हैं।
लक्ष्य हमेशा असली इंसानों की ठोस आज़ादी और बेहतरी होना चाहिए, ना कि किसी अमूर्त विचारधारा का अंधा पालन।
ये बहुत जरूरी संतुलन है। हाँ, और आज की इस पोलराइज दुनिया को जहाँ हर तरफ इतना शोर है, अलग अलग नैरेटिव हैं, उसे समझने में भी ये मदद करता है।
कैसे?
बुआर का अस्पष्टता को स्वीकारना हमें सिखाता है कि जो लोग हर चीज का बहुत सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट जवाब देते हैं, उनसे थोड़ा सावधान रहें, दुनिया अक्सर उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। ये हमें इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी सिखाता है कि हमें अपने विश्वासों पर कायम रहना चाहिए, पर यह भी मानना चाहिए कि शायद हम पूरी तरह सही ना हों, शायद दूसरा नजरिया भी वैलिड हो। हमें हमेशा अपने विचारों और कामों का दूसरों की आज़ादी पर पड़ने वाले असर को देखते रहना चाहिए।
तो मतलब खुले दिमाग से सुनना और लगातार सीखते रहना।
हाँ, और जिम्मेदारी लेना।
तो इस पूरी गहरी बातचीत से आपके लिए सबसे बड़ा टेक अवे, सबसे खास बात क्या रही?
मेरे लिए शायद वो सीरियस मैन का कॉन्सेप्ट ही सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग है। ये सोचना कि हम कितनी आसानी से और कई बार अनजाने में अपनी सोचने की आज़ादी, अपनी नैतिक जिम्मेदारी किसी बाहरी चीज को सौंप देते हैं, चाहे वो कोई आइडियोलॉजी हो, कोई लीडर हो, जॉब का प्रेशर हो, या बस लोग क्या कहेंगे का डर। ये हमें लगातार आत्मनिरीक्षण करने, खुद से सवाल पूछने के लिए प्रेरित करता है कि कहीं हम अपनी जिम्मेदारी से भाग तो नहीं रहे, और ये समझना कि सच्ची नैतिकता दूसरों की आजादी को बढ़ाने में है, उसे एक्टिवली चाहने में है, ये बहुत पावरफुल आइडिया है।
हाँ, मेरे लिए भी शायद यही कि आजादी और जिम्मेदारी ये दो अलग चीजें नहीं है, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और जिंदगी का कोई पहले से तय मतलब ना होना ये कोई ट्रेजेडी नहीं है, बल्कि ये एक कैनवस है, एक खाली कैनवस जिसे हम अपने बनाए हुए मतलब, अपने चुने हुए मूल्यों, अपने रिश्तों और कामों से भर सकते हैं। ये आसान नहीं है, इसमें कश्मकश है, अस्पष्टता है, पर यह हमें जबरदस्त ताकत भी देता है, ये हमें अपनी जिंदगी का लेखक बनाता है।
बिल्कुल, ये एक चैलेंजिंग लेकिन उम्मीद जगाने वाला नजरिया है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।